ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل انسانی زندگی پلاسٹک کے بغیر اس کا تصور بھی اب انسان نہیں کر سکتا. آپ برتنوں میں دیکھیے, کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھیے, یا کسی بھی چیز کے حوالے سے دیکھیں, پلاسٹک کا ہونا بہت ضروری ہے. کیا تعلق ہے صحت اور پلاسٹک کا آپس میں؟
جی, پلاسٹک ایک ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے آج کل, اور جو بھی چیزیں ہم ڈیلی روٹین میں یوز کر رہے ہیں, جس طرح کچن میں برتن ہو گئے, جس طرح بچوں کے کھلونے ہو گئے, بروش تک, ہر ایک چیز جو ہے یہ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے. اور آج کل اس طرح ہے کہ زندگی پلاسٹک کے بغیر بالکل نامکمل ہے. لیکن یہ جو پلاسٹک ہے, تھوڑا میں ہسٹری میں جاتا ہوں کہ پلاسٹک کے جو نقصانات ہے, کب سے اسٹارٹ ہو گئے, لوگوں کو کس طرح پتہ چل گیا. پلاسٹک ویسے جو اس کی ہسٹری ہے, یہ 1907 سے یہ چل رہا ہے, اور 1907 میں یہ بنایا گیا ہے پلاسٹک. اس کے بعد یہ 1930 تک یہ مسلسل استعمال میں رہا ہے, اور اس کی جو انڈسٹری تھی کافی منافع بخش انڈسٹری تھی, لوگوں نے اس سے پیسے بھی بہت کمائے, اور بالکل ہر ایک چیز بالکل ٹھیک طریقے سے چل رہی تھی. اور اس میں جو ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو پلاسٹک تھی, بہت آسانی سے چیزیں اس سے بن رہی تھی, کیونکہ آسانی سے اس کی کاپی بن سکتی ہے, آسانی کی اس کی پیداوار ہو سکتی ہے, تو بہت زیادہ فائدے تھے لوگوں کو. لیکن 1930 کے بعد کچھ لوگوں نے ریسرچ سٹارٹ کی کہ یہ جو پلاسٹک ہماری زندگی کے اندر اس طرح آیا ہے, اور اس کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے, اور ہر ایک چیز کے اندر پلاسٹک اب شامل ہو رہا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے صحت پر کوئی نقصان دہ اثرات ہو, یا جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں, کہ اس میں تو پلاسٹک کا عمل دخل نہیں ہے.
صحیح.
اس حوالے سے واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک سائنٹسٹ ہے, پیٹریشیا ہنٹ, جو ایک بہت ریناؤنڈ سائنٹسٹ تھی, اور اس نے اپنے لیب میں جو چوہے تھے اس پہ وہ کام کر رہی تھی, اور اس کا جو تولیدی نظام ہے اس پہ وہ ریسرچ کر رہی تھی, ایک ریپروڈکٹیو بایولوجسٹ تھی وہ.
صحیح.
تو وہ جو چوہے اس نے رکھے تھے مختلف کیجز کے اندر, پنجروں کے اندر, وہ اس پہ ریسرچ کر رہی تھی, اور ایک وقت تک تو یہ بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا,
نارمل تھا سب کچھ,
چوہے تھے وہ, ان کے ریزلٹس جو تھے سارے وہ اس طرح ٹھیک آ رہے تھے. لیکن اچانک کچھ اس طرح ہو گیا کہ اس نے کچھ تبدیلی نوٹس کی اس چوہے کے اندر, کہ جو 40% ان کے جو چوہے تھے اس کا جو تولیدی نظام تھا وہ بالکل خراب ہو گیا ایک دم.
اچھا.
تو اس کو بالکل اس طرح شک ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہو گیا اچانک, کہ یہ جو چوہے اب تک ٹھیک تھے, میرا ریسرچ چل رہا تھا, اور اچانک اس میں اس طرح کوئی مسئلہ آ گیا کہ 40% چوہے جو ان کا تولیدی نظام ختم ہو گیا.
ٹھیک ہے.
تو اس نے کچھ اس طرح جو اپنی کولیگس تھے یا جو ورکرز تھے, اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی چیز تو خوراک میں نہیں ڈالی ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس طرح خوراک تو ہم نارمل ڈال رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایک چیز ان لوگوں نے نوٹس کی کہ اس کے لیب میں ایک مادہ تھا جس کی وجہ سے وہ پرس صاف کرتے تھے, اسے ایک ڈس انفیکٹنٹ کا مادہ تھا. تو ریسنٹلی وہ آیا تھا, ایک نیا مادہ تھا, اور اس سے وہ پرس صاف کرتے تھے. تو اس نے وہ جو چوہے کے پانی کی بوٹلس تھے یا جو ان کے آس پاس کا ایریا تھا, اس سے اس نے جو ورکرس تھے اس نے اس سے صفائی کی تھی جسمانی سے, اور وہی مادہ جو ہے جو پلاسٹک کی جو بوٹلس تھے جس سے وہ چوہے پانی پیتے تھے اس کے ساتھ جو لگ گیا, تو اس سے ایک پلاسٹک کے اندر سے ایک چیز لیک ہو گئی, اور وہی جو چیز ہے وہ چوہے وہ پانی کے ذریعے وہ پی گئے,
بدن کے اندر جا رہا تھا.
جی, بدن کے اندر. تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو تولیدی نظام تھا وہ بالکل 40% کے اندر وہ ختم ہو گیا. تو اس نے اچانک پورا جو ریسرچ تھا اس پیٹریشا ہنٹ نے, اس نے پورا جو اپنا سارا جو توجہ ہے اس طرف کیا کہ اس میں کون سی اس طرح چیز ہے. تو اس کو پتا چلا کہ اس کے اندر ایک چیز ہے پلاسٹک کے اندر, اس کو ہم بسپینول کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور بسپینول یہی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ چوہے جو ہے اس کا جو 40% تولیدی نظام ہے اس کے اندر یہ خراب ہو گیا. تو یہ جو رپورٹس ہے یہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی کہ یار یہ پلاسٹک میں تو یہ مسئلہ ہے, اور لوگ دڑا دڑ یوز کر رہے ہیں. لیکن جو پلاسٹک انڈسٹری کے جو لوگ تھے, اس سے وابستہ جو لوگ تھے, ان کا جو پیداوار تھا وہ کافی انکم آ رہی تھی, تو انہوں نے مخالفت شروع کی کہ نہیں یہ ویسے مفروضے ہے, اس میں سچ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن پتہ ہے یہ جو چینجز آ گئے اور لوگوں کو جو پتہ چل گیا, یہ 1940 اور 1945 کے درمیان جب مائکرو ویو جو ہے یہ آ گیا, اور مائکرو ویو ایجاد ہو گیا, اور جو سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن ہو گئی وہ 1970
کے بعد,
کیونکہ 1970 میں جو مائکرو ویو ہے یہ کمرشلائز ہو گیا,
بالکل
مارکیٹ میں آ گیا, لوگ گھروں میں
عام گھروں میں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں,
اور یہ جو مسئلہ آ گیا ہے مائکرو ویو سے تب آ گیا ہے, کیونکہ اکثر جو ہم گھروں میں چیزیں استعمال کرتے تھے وہ جو گرم کرتے تھے یا پانی ابالتے دوسری مختلف قسم برتن میں کرتے تھے, لیکن مائکرو ویو کے آنے سے لوگوں کو اس طرح ایک آسانی مل گئی, اور اس نے پلاسٹک کی چیزیں جو اس میں رکھے نا, اس میں پانی اور یہ مختلف قسم کی چیزیں,
کھانا گرم کرنا,
بیک کرنا, بالکل, اور اس کی وجہ سے یہ جو بسپینول ہے इस तरह दूसरी बहुत सी एडिटिव्स है जो प्लास्टिक के अंदर शामिल है, जिस तरह तलेट्स हो गए या प्लास्टिसाइजर हो गए, मुख्तलिफ किस्म के इसमें एडिटिव्स शामिल हैं।
बिल्कुल,
ये जो बिस्पिनोल है ये इसमें से लीक हो गया, और ये जो बिस्पिनोल लीक हो गया और ये लोगों की खुराक में शामिल हो गया, जो लोगों के जिस्म के अंदर इसकी कंजम्पशन बढ़ गई, तो 1980 के बाद ये जो पूरी दुनिया में जो कैंसर का एक लेवल बढ़ रहा है और हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें सबसे अहम किरदार जो रिसर्च ये बता रही है ये बिल्कुल बिस्पिनोल और इसके प्लास्टिक
की वजह से है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, और नहायत ही अहम गुफ्तगू चल रही है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक की बॉटल्स का, प्लास्टिक के बर्तन का हम बआसानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारी जान को कितना खतरा है आप ये खुद जान रहे हैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनकर। चलते हैं हसन भाई की तरफ, और मेरे ख्याल से एक मज़ेदार सा हिस्सा तैयार है हमारा।
बिल्कुल, और उससे पहले हम ये बता दें कि एवो मोरालेस साहब जो बोलीविया के सदर हैं उन्होंने कहा है कि जल्द या बदेर हमें ये जान लेना चाहिए कि ज़मीन के भी अपने हुकूक होते हैं, ज़मीन हम ज़मीन के बगैर नहीं रह सकते हम इंसान, लेकिन ज़मीन जो है वो इंसानों के बगैर रह सकती है। और एक सवाल भी यहाँ पे आया है, पूछा गया है कि प्लास्टिक की बोतलें जो गाड़ी के अंदर रह जाती हैं धूप की जद में, क्या उन्हें फिर से इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं?
बिल्कुल, इत्तफाकन हम इस बारे में बात कर रहे थे हसन भाई, और जी हाँ, एनी का जो ये आइडिया है कि कपड़े की थैलियाँ हम ये काम कर सके और राइज कर सके अपने माशरे में, मेरे ख्याल से काफ़ी बीमारियों से हम जान छुड़ा सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की खिदमत में, और डॉक्टर साहब सवाल आपने सुन लिया है प्लास्टिक की बॉटल्स के हवाले से। आया जी,
प्लास्टिक की बॉटल का जो मसला है या जो प्लास्टिक का मसला है, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि प्लास्टिक से तब लीकेज होते हैं इन चीज़ों की जो नुकसानदेह मादे है, खासकर बिस्फिनोल। इसमें ये बात बहुत अहम है कि जब प्लास्टिक गर्म हो जाता है तब इससे लीकेज होती है, क्योंकि जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है या जो इसमें अगर हम कोई सब्जी रखते हैं या कोई ठंडा चीज़ रखते हैं, तो इस सूरत में जो इसकी लीकेज है बिस्फिनोल की, एक हिस्सा इससे लीकेज हो जाता है, इसका लीकेज हो जाता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को किसी चीज़ में गर्म कर रहे हैं, जिस तरह हम माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं, या इसमें से गर्म चीज़ डाल रहे हैं और वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो उस सूरत में जो हिस्से है वो 55 हिस्से चले जाते हैं इसमें से।
सही।
तो जो ये रेशो है 1:55, ये एक रेशो है। तो जो पानी की बॉटल्स है वो अगर गाड़ी के अंदर पड़ा है या इस तरह धूप में पड़ा है, ज़ाहिर बात है उस पर जो सूरज की जो किरणें लगती है वो गर्म हो जाता है, तो उस सूरत में बिस्पिनोल की लीकेज है वो बिल्कुल यकीनी तौर पर हो जाती है, और ये जो बिस्पिनोल है वो पानी के अंदर चला जाता है, और वही पानी अगर हम पी रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो इसके नुकसानदेह असरात है वो हमारे बदन पे जाहिर आना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह कैंसर होगा या दूसरी चीज़ें।
सही। और डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ प्लास्टिक का नाम आता है वहाँ पर सर फहरिस्त कैंसर का नाम आता है। मैं चाहूँगी कैंसर के साथ साथ ये बताइए कि और कौन सी बीमारियाँ हैं जो प्लास्टिक की वजह से इंसानों से मुबतला हो रहे हैं?
इसमें ये जो रिसर्च इस पर हुई है, और जिस तरह शुरू में मैंने जिक्र किया कि 1980 के बाद ये जो कैंसर की रेशो बनी है, इसमें इसका काफ़ी अमल दखल है। सबसे जो प्रायोरिटी इसकी जो है साइड इफेक्ट है या जो हेजरडस इफेक्ट है वो तो कैंसर ही है। इसके अलावा जो दूसरी इसके हेजरडस इफेक्ट्स के प्लास्टिक्स के, खासकर जो बिस्पिनोल से रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें ज़ियाबतीज़, आजकल ये जो ज़ियाबतीज़ है स्पेशली टाइप 2 ज़ियाबतीज़ जो है, डायबिटीज़ टाइप 2, इसमें ये बिल्कुल अब ये रिसर्च बता रही है कि इसमें बिस्पिनोल का एक बड़ा किरदार है। इसके अलावा बच्चों के अंदर ये जो ओबीज है या ओबेसिटी है या जो मोटापा इसको हम बोलते हैं, इसमें इसका किरदार है प्लास्टिक्स का। इसके अलावा जो बच्चे जो होते हैं जो वक्त के साथ साथ वो दिमागी तौर पर वो नाबालिग होते हैं, ये भी रिसर्च बता रही है कि इसमें भी जो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं या जो इसकी लीकेज होती है मुख्तलिफ मादों की, इसमें इसका किरदार है। और एक और रिसर्च है, ये जो चिंपेंजी है जो एक बंदर की किस्म है, उस पर एक रिसर्च हुआ है, और इस रिसर्च ये साबित हो गई है कि ये जो बिस्फिनोल है इसके जो असरात है ये 3 नस्लों तक ये बरकरार रहती है।
अच्छा।
और इसमें जो ख़तरनाक बात ये है कि ये जो इसके एक्सपोजर है, या इसको हम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बोलते हैं, जो लोग इसमें फैक्ट्रीज में काम करते हैं प्लास्टिक के, या जो दूसरी घरेलू चीज़ें हैं इसकी वजह से वो एक्सपोज है, खासकर जो प्रेगनेंट लेडीज़ होते हैं, उसके अंदर अगर ये कंजम्पशन हो रही है, या इसके जो टॉपिकल एक्सपोजर है, या खुराक के ज़रिए या सांस के ज़रिए इसके चले जा रही है, तो इनका जो पीटस है इस पर इनका बिल्कुल दूरस असर होगा, और आने वाले दिनों में इसमें इनके जो चांसेस है, जो डायबिटीज़ जो डायबिटीज़ के चांसेस है, इसमें काफ़ी हद तक इसका अमल दखल है, मौजूद है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने यहाँ पर कहा कि सांस लेने से या फिर खाने से, पूछना चाहूँगी अगर प्लास्टिक का आपके यानी भार यानी आपके जिल पर इसका कोई रिएक्शन हो सकता है, यानी आपने खाया नहीं है लेकिन आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना है जिसमें प्लास्टिक मटीरियल शामिल है, या फिर आपने कोई ऐसी चूड़ी वगैरह जो भी या घड़ी वगैरह जो प्लास्टिक मटीरियल है, क्या उससे कोई स्किन रिएक्शन स्किन इरिटेशन हो सकती है आपको?
स्किन इरिटेशन तो रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन ये जो प्लास्टिक्स है इसके जो मेन डिसऑर्डर्स है ये मोस्टली ये इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, इसको हम बोलते हैं EDCs हम बोलते हैं। ये जो EDCs है ये जो बिस्पिनोल हो गया, प्लास्टिसाइज हो गए, तलेट्स हो गई, ये जो चीज़ें हैं ये अगर हमारे जिस्म के साथ ये टच हो रही है बीड़ी की सूरत में या जो दूसरी की नोले है या जो दूसरी प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो स्किन से रिलेटेड एज सच कोई मसले नहीं होंगी, लेकिन जब इसकी एब्जॉर्प्शन होगी ब्लड स्ट्रीम में ये चला जाता है, हमारे जिस्म के अंदर ये शामिल हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में इसके जो नुकसानदेह असरात है ये रोनमा होना शुरू हो जाती है।
सही।
एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है अहमद साहब ने, ये कहाँ से, हाँ गुड़गांव से, दिल्ली से पहली दफा आ रहे हैं हम लोग के पास। वो पूछते हैं कि यहाँ अगर बोतल जो है वो उसकी एक माफ कीजिएगा, हाँ ये जो है वो जो प्लास्टिक की बोतल के बारे में उन्होंने पूछा है जो बच्चों को जैसे फीडर के तौर पे दी जाती है उसको धोना या फिर खोलते हुए पानी में डालने के हवाले से उन्होंने पूछा।
जरूर हसन भाई, और मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब इनके सवाल में थोड़ी सी अपनी बात भी मैं शामिल करती चलूँ कि आया आप रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को प्लास्टिक की फीडर जो होती है उसमें इनको जो है दूध पिलाया जाए, गर्म दूध है, ऊपर से निप्पल भी जो है इसकी प्लास्टिक की है, बॉटल का मटेरियल प्लास्टिक का, फिर बच्चे को बर्तन जो है छोटे चमचे या प्लेट वगैरह वो भी प्लास्टिक के रिकमेंड करते हैं आप या नहीं?
असल में ये है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक खासकर US में, उसमें जो प्लास्टिक्स है उसके अंदर से उन लोगों ने मुकम्मल तौर पर बिस्पिनोल को हटाया है।
अच्छा।
और जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर उन लोगों ने क्लियर लिखा है कि ये बिस्पिनोल फ्री है। लेकिन हमारा मसला ये है कि जो तरक्की पजीर ममालिक है उसमें अभी तक ये ट्रेंड नहीं है, और जितनी भी कंपनीज है ये जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप अगर सर्च कर लो नेट पे देख लो को कहीं से उसने एक टैग लगाया होगा या जो इनके प्रोडक्ट्स है उस पर लिखा होगा कि ये बिस्पिनोल फ्री है, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं है।
होता।
अब भी जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है जो पीडर हो गया, जिस तरह पीडर का निपल हो गया, इसमें अब तक अब ये चीज़ें हैं, तो जाहिर बात है कि जो बच्चे इसमें वो दूध पीते हैं और जो दूध होता है वो गर्म होता है तो इसमें इनकी काफ़ी चांसेस है कि ये जो लीकेज है बिस्पिनोल की या जो दूसरी रिलेटिव्स है ये बच्चे के जिस्म के अंदर ये चला जाता है और उसके जो नुकसानदार असरात हैं जाहिर है उस पर शुरू होना होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे मुख्तलिफ किस्म की किनोले से खेलते हैं, जो टाइज होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, तो ये भी एक बिल्कुल ख़तरनाक और ये एक नुकसानदेह चीज़ है बच्चों के लिए। और जितने भी जो बर्तन है किचन के अंदर जो प्लास्टिक बने हुए हैं ये बिल्कुल इसको रिप्लेस करना चाहिए, और जो हमारे पास दूसरे अल्टरनेटिव्स है जिस तरह सिरामिक्स हो गया, जिस तरह स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्यूमिनियम के बर्तन है, इनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। और ये जो FDA है, जो US FDA है, 2012 में अमेरिका में तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है बिस्पिनोल के इस्तेमाल पर, क्योंकि जो इनके हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स है ये बिल्कुल अब जाहिर है सबको पता हो गया है कि इनके जो नुकसानदेह असरात है ये इस बिस्पिनोल की वजह से है, तो ये इसमें तो ये बिल्कुल बैन है। बल्कि इससे पहले जो उन लोगों ने रिसर्च की थी जो अमेरिकन्स पे, 93% जो लोग थे जो डेली रूटीन में ये जो मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, 93% जो लोग थे उसके यूरिन सैंपल में बिस्पिनोल मौजूद थी किसी न किसी सूरत में, तो इससे हद तक ये मसला बढ़ गया था। तो 2012 में US के अंदर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, या जो भी इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें बिस्पिनोल नहीं है, और क्लियरली उस पे जो टैग है वो लिखा हुआ है,
वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, हमारा सवाल जो हमारे अजीज नाजर अहमद साहब ने पूछा था कि ये बच्चों की जो फीडर्स वगैरह होते हैं इनको धोने का एक खास मरहला होता है, कहते हैं कि जरासीम से उसको पाक किया जाए तो इनको उबाला जाता है गर्म पानी में, तो ये सही है नहीं है, किस तरह से है?
बिल्कुल नहीं है कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये कोई गारंटी नहीं है कि प्लास्टिक का एक बोतल जो है या जो पीडर है इसके अंदर बिस्पिनोल नहीं है, ये गारंटी तो नहीं है। अगर आप प्लास्टिक की बोतल को आप बॉयल कर रहे हैं तो जाहिर है जो टेम्परेचर है, और ये जो मैंने एक रेशो बताई कि 1:55, ये जो रेशो है इसमें जो टेम्परेचर है इसका बिल्कुल बड़ा अमल दखल है, क्योंकि अगर 100% से टेम्परेचर बढ़ रहा है 100 डिग्री से तो इस सूरत में इनकी जो लीकेज की जो मकदार है ये जो 55 तक पहुँच रहा है, जो 55 हिस्से इसमें शामिल हो रही है, इसका ताल्लुक टेम्परेचर से है। जो भी चीज़ें इसको हम बॉयल कर रहे हैं, इसको हम उबाल रहे हैं, वो बॉटल हो, वो पीडर हो, जो भी प्लास्टिक से रिलेटेड वो चीज़ हो, प्लास्टिक का बना हुआ चीज़ हो, तो टम्परेचर का इससे गहरा ताल्लुक है। टम्परेचर बढ़ेगा तो जो बिस्पिनल की लीकेज है वो जो इसके अंदर वो चला जाता है, इसके अंदर अगर
बिल्कुल
लिक्विड है, इसके अंदर अगर फूड है, जो भी चीज़ है, तो इसके अंदर ये शामिल होगा।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं, चले मान लिया कि हमने अपनी ज़िंदगी में से प्लास्टिक को किसी ना किसी तरह से हटा दिया, लेकिन आसपास जो लोग हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिर हम देखते हैं कि कचरे के ढेर में जब ये प्लास्टिक्स जाते हैं, वो थैलियाँ हो, बॉटल्स हो, कुछ भी हो, तो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन इनमें आते हैं। मिसाल के तौर पर मौसम का असर पड़ता है, धूप रोशनी वगैरह जो पड़ती है, मुख्तलिफ गैसेज जहन में से खारिज होते हैं, और वो गैसेज जो है फिर इंसानी सेहत के लिए दोबारा उनको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एस्थमा की एक बहुत बड़ी वजह मैंने सुना है, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है?
ये तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसके जो हैज़र्डस इफेक्ट्स है, क्योंकि ये जो आजकल जो डिब्रिज है, जो सी डिब्रिज है, ये भी अब रिसर्च से साबित हो गई है कि 90% जो सी डिब्रिज है, जो समंदर के अंदर लोग कचरा फेंकते हैं, इसमें 90% ये प्लास्टिक की बॉटल्स है, प्लास्टिक की चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये तो एक और अलग मौजू है, किसी दिन इस पर हम बात करेंगे कि ये जो डिब्रिस पड़े हैं या जो माहौलियाती आलूदगी से रिलेटेड या जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जानवरों पे इसके कौन से असरात है, या जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मछलियाँ है, इस वो जो खा रहे हैं इसको, और इसमें एक और बात ये शामिल है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो इसका जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, जो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है, तो बिल्कुल आसानी के साथ वो पानी के ज़रिए या जो खुराक के ज़रिए जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसमें ये चला जाता है, और वही लाइफ, वही जो चीज़ें हैं, जो मछलियाँ है, वो अगर लोग खा रहे तो एक दूसरी सूरत में ये जो प्लास्टिक है या जो बिस्पिनोल है या जो दूसरी रेटिव है, ये हमारे जिस्म के अंदर जा रहे हैं, तो ये तो इसके इन्वायरमेंटल हैज़र्डस इफेक्ट्स हैं। और इसका जो असर है, अगर गैसेस लीकेज हो रहे हैं या जो दूसरे पौधे हैं इसके असरात है, तो बिल्कुल वो तो जाहिर है, जितनी भी आलूदगी है उसकी मुज़िर असरात है, इसमें इनका भी एक बड़ा किरदार है। जो प्लास्टिक के बैग्स है या जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स है, हर जगह पड़े होते हैं, जो कचरे के ढेर है, तो उससे जाहिर बात है ये चीज़ें लीकेज इसकी होगी। और ये जो दूसरी बीमारियां हैं, जो हम कह रहे हैं कि इनहेलेशन के थ्रू या जो सांस लेने के ज़रिए, जो शुरू में हमने जिक्र किया कि इसका एक जो रूट ऑफ एक्सपोजर है, जिस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जा रहा है, इसमें एक इनहेलेशन है, तो जाहिर बात है ये इनहेलेशन में या जो हवा में ये कहाँ से आता है, ये जो हम कचरा फेंकते हैं, इसमें जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं या जो डब्बे होते हैं, वो अगर वो इसको कोई आग लगा देता है या से बीन से जो मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शन होते हैं, तो ये हवा में शामिल हो जाते हैं। वही हवा अगर हम इसको इनहेल कर रहे हैं, तो जाहिर बात है ये हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है, और ये जो खराब असर आते हैं बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से हमारा आखिरी सवाल रहेगा, क्या किया जाए और किस तरह से अपनी जान को बचाया जाए?
तो ये इसमें जो एहतियाती तदाबीर है, इस हवाले से मैं बात करता हूँ कि जितनी भी प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें हैं किचन के अंदर, वो बिल्कुल उसके हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है, दूसरे किस्म के बर्तन मौजूद
कांच के, स्टील के, एल्युमिनियम के, बिल्कुल
स्टील है, एल्युमिनियम है, शीशे के है, बिल्कुल वो इस्तेमाल करने चाहिए, प्लास्टिक को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए किचन से। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे हैं जो खेलते हैं प्लास्टिक की खिलौनों से, बिल्कुल ये जो दूसरी किस्म के खिलौने हैं जो कपड़े के बने होते हैं या जो दूसरे प्लास्टिक के नहीं बने होते, वो देने चाहिए। ये एहतियाती तदाबीर है, इसके ज़रिए हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि ये कितना नुकसानदेह चीज़ है और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है, क्योंकि ये जो रिसर्च है ये है कि 2050 तक जो प्लास्टिक है, जो इसका जो डिब्रिज है, ये 33 बिलियन टन्स तक पहुंच जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये जो इसकी डिग्रेडेशन होती है या जो इसकी डिकम्पोजिशन होती है, ये नहीं हो रही
नहीं होता।
और हर एक जगह पे इसको हम फेंक देते हैं, वही कि वही रह जाता है। तो ये जो ख़राब असरात है, जो इसके मुज़िर असरात है, ये सालों सालों तक इस तरह हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करेंगे। तो जितना हो सके जो इसके अल्टरनेटिव है, अगर हम शॉपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं तो रीयूजबल शॉपिंग बैग यूज़ करें, कपड़े के तेल यूज़ करें, बल्कि आलकर तो मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो मार्केट में ऐसे बैग्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो रीयूजबल है, दोबारा इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत लाजमी चीज़ है कि प्लास्टिक के जो अल्टरनेटिव है, हम इसको इस्तेमाल कर लें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप तशरीफ लाए, ज़बरदस्त गुफ्तगू रही और नहायत ही दिलचस्प गुफ्तगू। और जी, अगर मेरे ख्याल से इस प्लास्टिक से अपनी जान हम छुड़ा लें, या किस तरह से इसकी आदत जो है हम ये कि इसका इस्तेमाल ना करें, अपने माहौलियात को, अपनी ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं, क्यों समझाइए?
बिल्कुल ऐसा ही, और हम जानना चाहेंगे हमारे नाज़रीन इस सिलसिले में क्या करेंगे, और वाकई अगर इसको हम एक तहरीक में तब्दील कर दें। बहुत सारे लोगों ने, एक मिसाल है बॉम्बे में जो अफरोज शाह साहब हैं, जिन्होंने ये काम किया कि पूरे अपने वो जो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रिप थी गंदगी की, उसको साफ़ करके दिखाया। तो हम लोग भी यकीनन एक अहम कदम अपनी ज़िंदगी में उठा सकते हैं कि प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। इंशाल्लाह हम भी यही काम करेंगे, और अपने तमाम नाज़रीन से भी हमारी यही गुजारिश रहेगी इंशाल्लाह।